एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आपका एकत्र ज्ञान गोष्ठी में।
नमस्कार,
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
ये किताब पढ़ने के हमारे रोजमर्रा के अनुभव को आप कह सकते हैं एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है।
हाँ, किताब का नाम है एनोटेशन और इसके लेखक हैं रेमी कलीर और एंटेरो गार्सिया।
और ये जो विषय है एनोटेशन, मतलब किसी लिखी हुई चीज पर निशान लगाना, नोट्स बनाना, टिप्पणी करना।
हाँ, सुनने में तो शायद ये बहुत ही साधारण सी बात लगे।
बिल्कुल, हम सबने किया है ये। कभी ना कभी किताबों के हाशिए पर कुछ लिखा है ना, या फिर आजकल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में कमेंट्स डालते हैं।
सही कहा, लेकिन ये किताब बताती है कि ये जो साधारण सा दिखने वाला काम है, ये कितना असाधारण हो सकता है, इसमें कितनी ताकत छुपी है।
हाँ, और खासकर आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ हम चारों तरफ से सूचनाओं से घिरे हुए हैं, तब ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि हम सिर्फ जानकारी को बस लेते ही ना रहें, बल्कि उसके साथ एक्टिवली जुड़ें।
एक्टिवली जुड़ें, उस पर सवाल उठाएं।
हाँ,
और दूसरों के साथ मिलकर उसके मायने निकालें।
बिल्कुल, तो ये किताब इसी जुड़ाव की ताकत को उजागर करती है।
तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प बातचीत।
बिल्कुल, शुरुआत लेखकों से करते हैं।
बिल्कुल,
रेमी कलीर और एंटेरो गार्सिया।
हाँ, ये दोनों लेखक, इनका साथ आना ही इस किताब को काफी खास बनाता है।
क्यों, ऐसा क्या खास है इनके कॉम्बिनेशन में?
देखिए, रेमी कलीर जो है वो कोलोराडो डेनवर विश्वविद्यालय में लर्निंग डिजाइन और टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं।
अच्छा।
उनका रिसर्च इस बात पर है कि लोग सीखते कैसे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी की मदद से, और उनका एक स्पेशल फोकस रहा है सोशल एनोटेशन पर।
सोशल एनोटेशन
मतलब जब लोग अकेले नहीं बल्कि ग्रुप्स में मिलकर किसी टेक्स्ट पर बातचीत करते हैं, खासकर डिजिटल स्पेस में।
हाँ, ओके।
और दूसरे लेखक एंटेरो गार्सिया।
हाँ,
एंटेरो गार्सिया वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा, साक्षरता और जिसे हम सिविक एंगेजमेंट कहते हैं, यानी नागरिक जुड़ाव, उस पर काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि पढ़ना लिखना खासकर युवाओं के लिए सिर्फ एक एकेडमिक स्किल नहीं है।
अच्छा।
बल्कि ये समाज से जुड़ने का, अपनी आवाज उठाने का एक जरिया कैसे बन सकता है।
तो मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी और लर्निंग की गहरी समझ है।
हाँ।
और दूसरी तरफ साक्षरता, समाज और नागरिक जुड़ाव का नजरिया।
बिल्कुल, और इसीलिए ये दोनों मिलकर एनोटेशन को सिर्फ एक क्लासरूम एक्टिविटी या पर्सनल हैबिट की तरह नहीं देखते। वे इसे इतिहास, तकनीक, शिक्षा, समाज, इन सब के एक बड़े कैनवस पर रख कर देखते हैं।
ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना, इनका प्रैक्टिकल काम भी है इस फील्ड में।
हाँ, यही खास बात है। इन्होंने असल में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जो दिखाते हैं कि कैसे हाशिए पर लिखी गई बातें, मार्जिनल नोट्स, हाशिए की आवाजों को ताकत दे सकती हैं।
अच्छा।
तो इनकी बातें सिर्फ किताबी नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई हैं।
तो फिर किताब का मूल विचार क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ नोट्स लेने के फायदों पर है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि एनोटेशन, यानी टेक्स्ट पर अपनी छाप छोड़ना, ये पढ़ने को एक पैसिव काम से एक एक्टिव काम में बदल देता है।
एक्टिव और शायद सोशल भी।
हाँ बिल्कुल, एक्टिव और ज्यादातर एक सामाजिक काम, सोशल एक्टिविटी। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है बल्कि अर्थ बनाना है, मतलब निकालना है,
एक तरह की बातचीत।
हाँ, बातचीत करना है लेखक से, टेक्स्ट से और दूसरे पाठकों से भी।
ये उस आम सोच को चुनौती देती है कि पढ़ना मतलब बस अकेले कमरे में चुपचाप किताब में खो जाना।
सही कहा, किताब दिखाती है कि सदियों से पढ़ना एक सामाजिक गतिविधि रही है और आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं,
हाँ,
वो उस सामाजिक पहलू को नए और शक्तिशाली तरीकों से वापस ला रही हैं।
बिल्कुल,
एक तरह से हाशिए पर लिखे नोट्स को एक पब्लिक मंच दे रही हैं।
बिल्कुल, किताब हमें एनोटेशन की जड़ों तक ले जाती है, मतलब प्राचीन ग्रंथों से लेकर मध्ययुगीन पांडुलिपियों तक, और फिर दिखाती है कि कैसे वही प्रवृत्ति आज वेब पेजों पर, डिजिटल दस्तावेजों पर जिंदा है।
तो ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं है।
नहीं, ये पढ़ने और सीखने के एक बुनियादी मानवीय तरीके का कह सकते हैं पुनर्जन्म है।
चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किताब की शुरुआत ही एनोटेशन की हमारी समझ को थोड़ा एक्सपैंड करती है ना।
हाँ बिल्कुल, लेखक कहते हैं कि एनोटेशन सिर्फ मार्जिन में लिखना या हाईलाइट करना भर नहीं है।
अच्छा,
ये टेक्स्ट में किसी भी तरह की एक परत जोड़ना है, जैसे कोई सवाल पूछ लिया, कोई कनेक्शन बना लिया किसी दूसरी चीज से, अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, चाहे वो एक इमोजी से ही क्यों ना हो।
हाँ, इमोजी भी एनोटेशन है।
बिल्कुल, या किसी और के लिए कोई लिंक छोड़ दिया, ये सब एनोटेशन है। हम अक्सर इसे बस यूं ही कर देते हैं बिना इसकी ताकत को पहचाने।
और फिर किताब हमें इतिहास की एक तेज यात्रा पर ले जाती है। वो याद दिलाती है कि सोशल रीडिंग कोई आज की ईजाद नहीं है। इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण वो देते हैं तालमुद का, यहूदी धर्म का अहम ग्रंथ।
तालमुद कैसे?
उसमें जो मूल टेक्स्ट है उसके चारों तरफ सदियों की टिप्पणियों, बहसों और व्याख्याओं की परतें हैं।
अच्छा,
ऐसा लगता है मानो एक ही पन्ने पर कई पीढ़ियों के विद्वान आपस में बात कर रहे हों।
ये सोचना ही कितना दिलचस्प
है ना। और मध्य युग में भी जो स्क्राइब्स होते थे वो हाशिए पर स्कोलिया लिखते थे।
स्कोलिए मतलब नोट्स।
हाँ, नोट्स, स्पष्टीकरण, आलोचनाएं। और वो पियरे डी फर्मा का मशहूर मार्जिनल नोट तो है ही।
हाँ, गणित वाला, जिसने गणितज्ञों को सदियों तक उलझाए रखा।
वही, उन्होंने एक प्रमेय का हल्का दावा किया और लिख दिया कि इस हाशिए में इसे साबित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।
सोचिए, एक हाशिए की कमी ने गणित के इतिहास को कैसे मोड़ दिया।
ये उदाहरण बस यही दिखाते हैं कि पढ़ना और उस पर रिएक्ट करना हमेशा से कितना जुड़ा हुआ और सोशल रहा है।
सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या वजह है निशानों के पीछे?
किताब इसके कई कारण बताती है। सबसे आम तो है याददाश्त और सीखने के लिए। हम भविष्य के मैं के लिए निशान छोड़ते हैं।
हाँ, ताकि बाद में याद रहे।
बिल्कुल। फिर है समझ को गहरा करने के लिए। लिखते हुए या सवाल पूछते हुए हम खुद चीजों को बेहतर समझते हैं।
क्लैरिटी मिलती है।
हाँ, और कभी कभी हम सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। वाह, क्या बात है, या फिर ये क्या बकवास लिखा है।
हाँ, ये भी होता है।
और कभी कभी लेखक से सीधी बातचीत जैसा लगता है ना, जैसे हम टेक्स्ट से बहस कर रहे हों।
बिल्कुल, या फिर दूसरे पाठकों से जुड़ने की इच्छा, जैसे किसी पुरानी किताब में किसी और के नोट्स पढ़कर एक अजीब से कनेक्शन महसूस होता है।
हाँ, और हाँ, कभी कभी ये अपनी पहचान बनाने का तरीका भी होता है। देखो, मैंने इसे पढ़ा है और मेरे पास इस पर कहने को कुछ है, एक तरह का इंटेलेक्चुअल सिग्नलिंग।
अच्छा, तो ये तो हुई क्यों की बात, अब आते हैं कैसे पर। तरीके तो बदलते रहे।
हाँ बिल्कुल, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर से लेकर आज के डिजिटल टूल्स तक,
जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कमेंट्स डालना।
हाँ, या किंडल पर हाईलाइट करना, और अब तो हाइपोथेसिस या जीनियस जैसे खास प्लेटफॉर्म भी हैं।
हाँ, वो तो किसी भी वेब पेज पर एनोटेट करने देते हैं
और दूसरों की एनोटेशंस देखने की सुविधा भी देते हैं। लेकिन किताब का जोर इस बात पर है कि भले ही ये टूल्स बदल जाए, टेक्स्ट के साथ जुड़ने, उसे अपना बनाने, उस पर अपनी छाप छोड़ने की जो इंसानी इच्छा है वो वही रहती है।
ये तो हुई तरीकों की बात, लेकिन असली जादू, जैसा आप कह रही थी, तब होता है जब ये एनोटेशंस अकेले न रहकर सबके साथ साझा किए जाते हैं।
बिल्कुल, यहीं से किताब सामाजिक एनोटेशन के आइडिया पर फोकस करती है।
तो क्या है ये सामाजिक एनोटेशन?
जब हम अपनी टिप्पणियां दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरों की टिप्पणियां देखते हैं, तो एनोटेशन एक पर्सनल एक्सरसाइज से बढ़कर एक कलेक्टिव एक्टिविटी बन जाता है।
जैसे क्लासरूम?
हाँ, क्लासरूम का उदाहरण सोचिए। जब छात्र मिलकर किसी आर्टिकल या कहानी को एनोटेट करते हैं तो हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है।
हाँ, उन छात्रों को भी जो आमतौर पर चुप रहते हैं।
एग्जैक्टली, और वो एक दूसरे के आइडियाज से सीखते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं। ये सिर्फ जानकारी का लेना देना नहीं है, बल्कि मिलकर ज्ञान बनाने की प्रक्रिया है।
को-कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज।
हाँ,
यही चीज रिसर्च ग्रुप्स में होती है या फिर ऑनलाइन फैन कम्युनिटीज में भी, जहाँ लोग मिलकर फिल्मों, किताबों या गानों के अर्थ निकालते हैं, डिस्कस करते हैं।
पर किताब इससे भी एक कदम आगे जाती है। वो एनोटेशंस को सिर्फ सीखने या कम्युनिटी बनाने तक ही नहीं रखती,
नहीं,
बल्कि उसे नागरिक जुड़ाव और लोकतंत्र के लिए भी एक जरूरी औजार मानती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है।
हाँ, लगता है।
लेकिन जरा सोचिए, गलत सूचना और प्रोपेगेंडा का जमाना है ये।
बिल्कुल।
ऐसे में अगर हमारे पास ऐसे तरीके हों जिनसे हम पब्लिकली किसी खबर, किसी सरकारी दस्तावेज या किसी पॉलिसी पर सवाल उठा सकें, उसकी फैक्ट चेकिंग कर सकें और उस पर सामूहिक चर्चा कर सकें, तो ये कितना पावरफुल हो सकता है।
हाँ, बात तो सही है।
एनोटेशन हमें ये क्षमता देता है। ये जानकारी को सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स की जागीर नहीं रहने देता। आम नागरिक भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को समझ सकते हैं, उन पर अपनी राय रख सकते हैं और कह सकते हैं, अरे इस पॉइंट का क्या मतलब है या ये डेटा कहाँ से आया, सीधे सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं।
तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का एक जमीनी तरीका बन सकता है।
बिल्कुल, और किताब का अंत भी बड़ा अनूठा है।
हाँ, मैंने पढ़ा, लेखक अपने ही लिखे निष्कर्ष को एनोटेट करते हैं।
हाँ, जैसे वो कह रहे हो कि ये बातचीत कभी खत्म नहीं होती, ये विचार हमेशा विकसित होते रहते हैं। एक तरह से वो अपनी ही बात को प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं।
कमाल है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े संदेश या थीम्स क्या उभर कर आते हैं? पहला तो शायद यही कि एनोटेशन ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाता है, डेमोक्रेटाइज करता है।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। ये आवाजों को बराबरी का मंच देता है। क्लासरूम में वो बच्चा जो बोलने में झिझकता है, एनोटेशन के जरिए अपनी बात रख सकता है।
सही।
ऑनलाइन चर्चाओं में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक ही टेक्स्ट पर अपने नजरिए शेयर कर सकते हैं। ये ज्ञान को कुछ खास लोगों के दायरे से निकालकर सबके लिए उपलब्ध कराता है।
जैसे हम देखते हैं ना किसी ऑनलाइन आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में कैसे एकदम अलग अलग तरह की बहसें छिड़ जाती हैं।
हाँ, वो इसी का एक रूप है। बेशक वो हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होती, लेकिन पोटेंशियल तो है।
दूसरा अहम संदेश ये हो सकता है कि एनोटेशन प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का एक तरीका भी हो सकता है।
हाँ, हाशिए पर लिखना मतलब हाशिए से बोलना।
बिल्कुल। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने आधिकारिक या प्रमुख विचारों को चुनौती देने के लिए टेक्स्ट के मार्जिन का इस्तेमाल किया। आज छात्र टेक्स्ट बुक में लिखी बातों पर सवाल उठाने या उसमें अपने अनुभव जोड़ने के लिए डिजिटल एनोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सही। या फिर नागरिक किसी सरकारी वेबसाइट पर जारी की गई नीति पर सवाल उठा सकते हैं, उसकी कमियों को उजागर कर सकते हैं। ये खामोश असहमति को आवाज देने का एक जरिया है।
बौद्धिक श्रम से समुदाय बनाता है, कम्युनिटी बिल्डिंग।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग मिलकर किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ सीखते ही नहीं, एक दूसरे से जुड़ते भी हैं।
एक बॉन्डिंग होती है।
हाँ, ये सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का भी कनेक्शन बनाता है। सोचिए किसी बुक क्लब या स्टडी ग्रुप के बारे में, जहाँ लोग मिलकर किसी मुश्किल टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। वो अनुभव सिर्फ अकादमिक नहीं होता, वो एक साझा यात्रा बन जाता है।
चौथा शायद ये कि ये व्यक्तिगत सोच और सामूहिक समझ के बीच एक पुल का काम करता है।
हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब हम एनोटेट करते हैं तो हम अपनी सोच को बाहर लाते हैं, उसे दूसरों के लिए विजिबल बनाते हैं।
राइट।
और जब हम दूसरों की एनोटेशंस पढ़ते हैं तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं, हमारी अपनी समझ गहरी होती है। ये हमें दिखाता है कि किसी भी चीज को देखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता।
जैसे ऑफिस में होता है, किसी प्रोजेक्ट पर टीम मिलकर काम करती है, एक ही डॉक्यूमेंट पर अलग अलग लोग अपने सुझाव देते हैं
और अंत में एक बेहतर नतीजा निकलता है। बिल्कुल।
और पांचवा, शायद सबसे जरूरी संदेश आज के समय के लिए, यह हमें बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार करता है।
हाँ, ये कैसे?
क्योंकि एनोटेशन हमें क्रिटिकली पढ़ना सिखाता है, सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे के अर्थ और इरादों को समझना। ये हमें सम्मानजनक तरीके से संवाद करना सिखाता है, दूसरों के विचारों पर प्रतिक्रिया देना सिखाता है, ये हमें सहयोग करना सिखाता है।
और ये सारे स्किल्स एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं।
हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब है कि हम खबरों को सिर्फ मान ना लें, बल्कि उन पर सवाल करें, उनके स्रोत देखें और दूसरों के साथ समझदारी से चर्चा करें।
इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ पंक्तियां तो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ, जैसे वो एक जगह कहते हैं, एनोटेशन टेक्स्ट लेखक और अन्य पाठकों के साथ एक बातचीत है। यह पढ़ने को एक दृश्य सामाजिक संवाद बनाता है, ना कि एक मूक एकाकी उपयोग।
कितनी सीधी और गहरी बात है। ये पढ़ने को सुनने से ज्यादा बोलने जैसा बना देता है, एक्टिव बना देता है।
और ये वाली बात भी, मानव इतिहास के अधिकांश भाग में पढ़ना चुपचाप नहीं होता था। जोर से पढ़ना, समूहों में पढ़ना और एनोटेशन के माध्यम से टेक्स्ट पर प्रतिक्रिया देना ऐतिहासिक रूप से सामान्य रहा है।
ये सुनकर लगता है कि हम तो बस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं ना। जिसे हम आज नया सोशल मीडिया ट्रेंड समझ रहे, वो शायद इंसान का बहुत पुराना स्वभाव है, टेक्स्ट के साथ इंटरैक्ट करने का।
एक और विचार जो मुझे बहुत पसंद आया, हर एनोटेशन बौद्धिक उदारता का संकेत है। यह एक प्रश्न, एक अंतर्दृष्टि या एक कनेक्शन की पेशकश है जो भविष्य के सभी पाठकों के लिए टेक्स्ट को समृद्ध करता है।
वाह, मतलब जब हम अपनी समझ साझा करते हैं तो हम सिर्फ अपनी मदद नहीं कर रहे,
नहीं,
हम ज्ञान के एक साझा कुएं में एक बाल्टी पानी डाल रहे हैं जो सबके काम आएगा।
बिल्कुल। और आखिर में वो चेतावनी या कहें कि आह्वान, गलत सूचना के युग में हमारे साझा डिजिटल टेक्स्ट को सार्वजनिक रूप से एनोटेट करने, सवाल करने और तथ्य जांच करने की क्षमता अब केवल अकादमिक कौशल नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नागरिकता के लिए एक मौलिक आवश्यकता है।
ये बात तो बिल्कुल सही है। ये एनोटेशन को क्लासरूम से निकालकर सीधे हमारे समाज और लोकतंत्र के भविष्य से जोड़ देता है। ये अब सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि जरूरी स्किल बन गया है।
तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए कोई छात्र है तो उसके लिए क्या सुझाव होगा?
उसके लिए मतलब सिर्फ किताब को रंगीन हाइलाइटर से पोतना नहीं।
हाँ, उससे ज्यादा कुछ।
बिल्कुल, बल्कि हाशिए में सवाल लिखना, अपने शब्दों में मुश्किल विचारों का सारांश बनाना, या पढ़ते हुए जो दूसरे विचार या अनुभव याद आए उन्हें नोट करना। और अगर डिजिटल पढ़ रहे हैं तो क्लास के साथियों के साथ मिलकर किसी लेख को एनोटेट करना, एक दूसरे की टिप्पणियों पर जवाब देना, ये सीखने को ज्यादा मजेदार और असरदार बना सकता है।
और शिक्षकों के लिए, उनके लिए तो ये एक खजाना हो सकता है।
बिल्कुल, ट्रेडिशनल असाइनमेंट के अलावा वो छात्रों को साथ मिलकर किसी कहानी, कविता या समाचार लेख को एनोटेट करने को कह सकते हैं।
इससे पता चलेगा कि छात्र असल में क्या सोच रहे हैं।
हाँ, कहाँ अटक रहे हैं। ये क्लास की चर्चा को ज्यादा जीवंत और समावेशी बना सकता है। और मीडिया लिटरेसी सिखाने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा?
कैसे?
छात्रों को मिलकर किसी वायरल खबर की चीरफाड़ करने को कहें, उसकी सच्चाई पर रखने को कहें, एनोटेट करते हुए।
ये तो बढ़िया आइडिया है। अच्छा, प्रोफेशनल्स के लिए भी इसके फायदे हैं ना, ऑफिस के काम में?
हाँ जरूर। सोचिए कितनी मीटिंग्स और ईमेल चेन बच सकती हैं अगर टीम के सदस्य सीधे किसी रिपोर्ट या प्रपोजल पर ही अपनी प्रतिक्रिया दे दें, वहीं पर डिस्कशन हो जाए।
हाँ, टाइम बचता है।
बिल्कुल, कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा हो, मार्केटिंग कॉपी फाइनल करनी हो, या कंपनी की कोई नई पॉलिसी बन रही हो, एनोटेशन पारदर्शिता लाता है और चीजों को तेज करता है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग मैनुअल्स पर अनुभवी कर्मचारियों की एनोटेशंस नए लोगों के लिए गाइड का काम कर सकती हैं। एक तरह का लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है।
और हम जैसे आम नागरिकों के लिए हम क्या कर सकते हैं?
हम ज्यादा जागरूक पाठक बन सकते हैं। खबरों को पढ़ते हुए रुक कर सोचें, क्या ये पूरी कहानी है, इसका स्रोत क्या है।
क्रिटिकल रीडिंग।
हाँ, ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करके हम लेखों पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं या देख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। और क्यों ना हम जटिल सरकारी योजनाओं या बजट जैसे दस्तावेजों को समझने के लिए एनोटेशन का सहारा लें।
मुश्किल लगता है ये तो।
अकेले शायद मुश्किल हो, लेकिन समूह बनाकर, ऐसे समूह बन सकते हैं जो मिलकर इन मुश्किल दस्तावेजों को आसान बनाए और उन पर चर्चा करें। ये जानकारी को सचमुच लोकतांत्रिक बनाने का तरीका है।
तो कुल मिलाकर इस किताब से मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि कैसे एक छोटा सा रोजमर्रा का दिखने वाला काम, हाशिए पर कुछ लिखना, जब इरादे से और दूसरों के साथ मिलकर किया जाए तो सीखने, जुड़ने और यहाँ तक कि दुनिया को थोड़ा बदलने का जरिया बन सकता है। ये व्यक्तिगत सोच को सामूहिक समझ से जोड़ता है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैसे ये सदियों पुरानी आदत टेक्स्ट पर निशान छोड़ने की आज के इस हाइपर डिजिटल युग में और भी ज्यादा ताकतवर और जरूरी हो गई है।
हाँ, ये पैराडॉक्सिकल लगता है थोड़ा,
है ना? ये याद दिलाता है कि तकनीकें आती जाती रहती हैं, लेकिन संवाद, सहयोग और मिलकर अर्थ बनाने की जो मानवीय जरूरत है वो हमेशा रहती है। ये किताब कहती है कि हर टेक्स्ट, हर जानकारी एक बंद दरवाजा नहीं
बल्कि
एक खुली खिड़की होनी चाहिए बातचीत के लिए, सवालों के लिए और नई संभावनाओं के लिए।
बहुत खूब, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।